सपनों की नगरी मुंबई से मध्य प्रदेश के छोटे से गांव डिंडोरी तक। इस महामारी में तिलक ने शुरू किया घर वापसी का ये लंबा सफर। गांव में तिलक की ब्याहता चंदा एक एक घंटा गिन के उसका इंतजार करती रही। क्या ले गया रास्ता तिलक को मंजिल तक, या रह गया ये सफर अधूरा? जानने के लिए सुने हमारा स्पेशल पॉडकास्ट उम्मीद जज्बात और लॉकडाउन की बात। सुनने के लिए लॉग ऑन करें www.navbharatgold.com पर।
बताया गया जो इवैल्यूएशन की गई कि जितना भी अनऑथराइज लैंड है उसको अगर उस समय के प्रिविलेंट रेट्स पर बेचा जाएगा लोगों को, तो 25,000 करोड़ जो है आ सकते हैं स्टेट को, और वो 25,000 करोड़ जो है इस्तेमाल किए जाएंगे एज ए रेगुलराइजेशन फी फॉर जनरेटिंग पावर, यानी कि ऊर्जा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन असलियत में हुआ क्या, बहुत सारे चेंजेस इसमें आते रहे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या कांग्रेस और पीडीपी की सरकार हो।
रोशनी एक्ट के नाम पर जम्मू कश्मीर में हुए घोटाले पर ये कहना है आदित्य राज कौल का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, आज है गुरुवार 26 नवंबर और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मरीज 92 लाख के पार। केंद्र सरकार ने दिसंबर के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। महामारी पर नियंत्रण और लोगों पर निगरानी के लिए राज्यों से कड़े उपाय करने को कहा गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मौतें कम करने के लिए एक्सपर्ट से मांगा सुझाव। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर अंत तक टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के ढीले रवैये से पीएम नरेंद्र मोदी खफा। प्रगति बैठक में साफ किया कि राज्य सरकारों के सहयोग न करने के बावजूद योजनाएं जारी रहेंगी। महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन परियोजना की गति है बेहद धीमी। कृषि कानूनों के खिलाफ और दूसरी मांगों को लेकर दिल्ली रवाना हुए पंजाब के किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर जगह जगह रोका गया। दिल्ली में सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई गई। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली और एनसीआर के दूसरे शहरों के बीच दोपहर तक मेट्रो सेवा बंद। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन। कुछ अरसा पहले हुई थी ब्रेन सर्जरी। अपने देश को जिताया था 1986 का फुटबॉल वर्ल्ड कप। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में किया था प्रसिद्ध हैंड ऑफ गॉड गोल। अब खबरें काम की। किन्नरों के लिए हेल्पलाइन की योजना बना रही सरकार। कानूनी, स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक सहयोग उपलब्ध कराने पर हो रहा विचार। नए श्रम कानूनों और बैंकों के विलय के विरोध में ट्रेड यूनियनों ने आज बुलाई हड़ताल। इससे पीएनबी, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रभावित हो सकता है काम। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है रोशनी एक्ट की आड़ में जम्मू कश्मीर में हुआ घोटाला और उसमें फंस रहे बड़े नाम। पूरी तस्वीर समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कौल से बात की हमारे सहयोगी रमेश तिवारी ने।
जम्मू कश्मीर में अंधेरगर्दी का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि राज्य में रोशनी फैलाने के नाम पर करप्शन का खेल खेला गया। इसके खिलाड़ियों में नेताओं, नौकरशाहों और बड़े कारोबारियों के नाम आए, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का नाम आया तो यह मामला पूरे देश में चर्चित हो गया। राज्य में लागू किए गए रोशनी एक्ट की आड़ में ये सब कैसे हुआ, इस बारे में हमें बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कौल, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति और प्रशासन पर गहरी नजर रखते हैं। आदित्य जी, फारूक अब्दुल्ला के राज में 2001 में इसकी शुरुआत की बात सामने आई है, हुआ क्या था?
जी, 2001 में ये सोचा गया ब्यूरोक्रेसी और सरकार के तहत कि बहुत सारे जो एनक्रोच लैंड है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसको स्टेट के अंदर यानी कि कानूनी तौर पर सरकार के अंदर लाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर भी, दूसरा जो सिक्योरिटी सिनेरियो पूरे कश्मीर उसके तहत एक सोचा गया कि रोशनी एक्ट लाया गया था। अब सवाल पैदा होता है कि इसका नाम रोशनी क्यों रखा गया। रोशनी इसलिए रखा गया क्योंकि बताया गया जो इवैल्यूएशन की गई कि जितना भी अनऑथराइज्ड लैंड है उसको अगर उस समय के प्रिवलेंट रेट्स पर बेचा जाएगा लोगों को तो 25,000 करोड़ जो है आ सकते हैं स्टेट को, और वो 25,000 करोड़ जो है इस्तेमाल किए जाएंगे एज ए रेगुलराइजेशन फी फॉर जनरेटिंग पावर, यानी कि ऊर्जा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन असलियत में हुआ क्या, बहुत सारे चेंजेस इसमें आते रहे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या कांग्रेस और पीडीपी की सरकार हो। पहले इसका कट ऑफ 1990 रखा गया, उसके बाद चेंजेस लाए गए और बहुत बार इसके कट ऑफ जो है चेंज किया गया। हालांकि 2001 में ये लाया गया था और 1990 का इसका कट ऑफ था, लेकिन 2005 में पीडीपी की सरकार जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की थी उन्होंने कट ऑफ चेंज करके 2004 कर लिया। उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई जो गुलाम नबी आजाद उसके हेड थे, 2007 उन्होंने उसका कट ऑफ चेंज कर दिया, और साथ ही जो कमर्शियल लैंड था उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत बार ऐसे किस्से भी सामने आए कि लैंड का अंडर इवैल्यूएशन किया गया, माने कि अगर लैंड की कॉस्ट 2 करोड़ रुपए है तो उसको कम करके 1 करोड़ या फिर 50 लाख कर दिया गया, ताकि चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल नेक्सस था, ये धीरे धीरे सामने आया। तो बहुत बार ऐसी एलिगेशंस लगी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हाईकोर्ट ने बहुत हाई लेवल पर इसका संज्ञान लिया और रोशनी एक्ट को नल एंड वॉइड किया, और सीबीआई इसमें जांच कर रही है। और हाईकोर्ट ने खास तौर पर बताया कि सीबीआई को और जो जम्मू कश्मीर की प्रशासन है उनको ये सारे नाम जो अक्यूज के हैं, चाहे वो जितने भी बड़े नाम हो, उन सबको पब्लिक करना चाहिए। तो कल डिविजनल कमिश्नर जो कश्मीर के हैं और जम्मू के हैं, उन्होंने अलग अलग इसकी सूची जो है पब्लिक की, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम आया। जो पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर है हसीब द्राबू, उनका नाम आया। मुश्ताक चाया जो सबसे बड़े बिजनेस टाइकून है जम्मू कश्मीर के, उनका नाम आया, और बहुत सारे अन्य कांग्रेस और पीडीपी के नेता हैं जिनका नाम इसमें उभर के आया है।
जम्मू के लोग आरोप लगा रहे हैं कि रोशनी एक्ट के जरिए लैंड जिहाद को अंजाम दिया जा रहा था, आप क्या कहेंगे इस पे?
देखिए, हाँ, बहुत ऐसे मद्देनजर हुआ है कि एक एडवोकेट है अंकुश शर्मा, जो खुद रोशनी एक्ट के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखे थे, और बाकी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग हैं, कुछ एक्टिविस्ट भी हैं जम्मू में, जिन्होंने कहा है कि सिर्फ रोशनी एक्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे मापदंड जो है कश्मीर सेंट्रिक पार्टी, जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कुछ हद तक कांग्रेस भी, इन्होंने एक जो है हिपोक्रेसी रखी और एक लैंड जिहाद किया। हालांकि मैं इसमें जब तक एविडेंस नहीं आता या जब तक प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करता तब तक इसमें औपचारिक रूप से कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, बहुत हद तक जो है पॉलिटिशियंस ने इसमें करप्शन किया। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने मुझे भी और बाकियों पत्रकारों को भी ये बताया है कि सिर्फ रोशनी एक्ट के तहत ही नहीं बट आउटसाइड रोशनी एक्ट भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, उनके खिलाफ भी उनके पास दस्तावेज और पुख्ता सबूत मिले हैं। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं फारूक अब्दुल्ला का, जो दस्तावेज मुझे मिले हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सुजाऊ जहां पर मिलिट्री कैंप भी है वो जम्मू के आउटर जम्मू में इलाका पड़ता है, वहां पर 3 से 4 कनाल फारूक अब्दुल्ला ने जमीन ली थी, लेकिन इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट पर्टिकुलर एरिया, वो जमीन छोड़कर उन्होंने 7-8-10 कनाल की अलग जमीन ली जो कि एक अलग लैंड था और उसपे एनक्रोचमेंट कर दी, और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें बिल्कुल ये नहीं दर्शाया। ये उस समय हुआ जब फारूक अब्दुल्ला खुद मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितना लूट मची रही, कितना पब्लिक एनक्रोचमेंट इलीगली होता रहा, और उसी के तहत अब सीबीआई जो है एक एक करके जांच कर रही है। अन्य अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता और ब्यूरोक्रेट्स का इसमें नाम है। उस समय के जो डीसी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, जो मेरे पास दस्तावेज मिले हैं वो इसमें अक्यूज्ड हैं सारे, वो अलग अलग आला अधिकारी बने हुए हैं आजकल, उनमें से एक तो यूनियन सेक्रेटरी भी हैं दिल्ली में। तो अब सीबीआई उनके खिलाफ क्या जांच करती है, क्या कार्रवाई करती है, वो देखना अहम रहेगा।
क्या ये जमीनें वापस हो सकेंगी सरकार के पास, कुछ ऐसे इंतजाम वहां का प्रशासन कर रहा है?
देखिए, मुझे लगता है कि प्रशासन ने पिछले 2 साल में जो भूमिका निभाई है कश्मीर में, जब से जो है एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल रहा है, वो एक सकारात्मक अप्रोच रही है। हालांकि उम्मीद और भी ज्यादा थी, उम्मीद थी कि ओवरनाइट जो है करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आतंकवाद भी हो सकता है थोड़ा सा कम होगा, वायलेंस कम होगी। उस पे मुझे लगता है उतना ज्यादा सटीक और उभरी नहीं सरकार, लेकिन मुझे लगता है कि सकारात्मक अप्रोच बिल्कुल रही है, थोड़ा स्लो एंड स्टडी रहा है, क्योंकि 370 का एब्रोगेशन भी हुआ, बहुत सारी हलचल हुई उस पर विश्वभर में, और करप्शन के खिलाफ भी एंटी करप्शन ब्यूरो का जो है एक बहुत बड़ा संगठन बना जम्मू कश्मीर सरकार के तहत, और सीबीआई हो, एनआईए हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, बाकी सेंट्रल एजेंसीज हो, उनका भी योगदान कहीं ना कहीं रहा। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर सरकार चाहे और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज चाहे तो बिल्कुल जितनी भी जमीनें हैं उनको वापस किया जा सकता है, हालांकि इसमें समय जरूर लगेगा लेकिन कार्रवाई जरूर होगी। मैं इसमें उदाहरण आपको ये दूंगा कि पिछले साल जब जम्मू कश्मीर बैंक का बहुत बड़ा एक स्कैम सामने आया, तब सरकार ने बिल्कुल एक सकारात्मक रोल निभाया और इमीडिएटली जो चेयरमैन थे जम्मू कश्मीर बैंक के, उनको निलंबित कर दिया। हालांकि उनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप इस्तीफा दीजिए, उन्होंने नहीं माना तो उनको निलंबित कर दिया गया। वो हाईकोर्ट भी गए लेकिन हाईकोर्ट ने भी उनका जो पिटिशन था क्वाश कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर बैंक में बहुत बड़ा एक स्कैम निकल के आया, एनपीएस का स्कैम भी निकल के आया, और इस बार भी जैसे मैंने आपको कहा, पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस के नेता हो या बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हो, इवन जो पुराने एक जेएनके बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं एमवाई खान, उनका भी नाम आया है। पूर्व ब्यूरोक्रेट रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी टैग के ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनका भी नाम आया है। तो बहुत सारे ऐसे नाम है, लेकिन काम अब जारी रहेगा और सबसे बड़ा चुनौती जो है सरकार की ये रहेगी कि इनके खिलाफ विटनेसेस और पुख्ता सबूत लेके आए और एंड में कार्रवाई होती है या नहीं होती है या पॉलिटिकल प्रेशर होता है, वो सबसे अहम रहेगा।
अब हमें जल्दी से ये बता दें कि क्या वहां की राजनीति पे इसका क्या असर होने जा रहा है, डीडीसी के चुनाव है और आगे की राजनीति पर?
देखिए, असर तो रहेगा क्योंकि आपने जब पिछले साल देखा 370 का जब एब्रोगेशन हुआ, अनुच्छेद 370 का, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया गया और लोगों में एक उत्साह था। अगर आप कश्मीर में जाते और रिपोर्टिंग करते और वहां से बात करते लोगों से, तो लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, एक भी बहुत बड़ा कोई प्रोटेस्ट या शटडाउन नहीं हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीबी के नेताओं के समर्थन में। अब जब उनके ऊपर ये लांछन लग रहे हैं, उनके ऊपर ये विटनेसेस और पुख्ता सबूत पब्लिक डोमेन में डाले जा रहे हैं, तो इससे क्रेडिबिलिटी पर असर तो जरूर पड़ेगा और साथ ही मुझे डीडीसी चुनाव में भी इस पर असर पड़ सकता है। लेकिन हालांकि बीजेपी का खास कर कश्मीर में वजूद नहीं रहा, तो हो सकता है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार, जो नया संगठन इन्होंने बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके, उनको अभी भी प्लस पॉइंट मिले। लेकिन जैसे आज वही परा जो है यूथ नेता हैं पीडीपी के, उनको भी अरेस्ट किया गया आतंकवादी संगठनों से बात करने के इल्जाम में, तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से क्रेडिबिलिटी पर असर जरूर पड़ता है। लेकिन देखना होगा कि डीडीसी चुनाव में ये लोग क्या करेंगे, लेकिन सर्टनली कुछ हद तक मुझे लगता है क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा जो है असर जरूर पड़ेगा।
शुक्रिया आदित्य जी।
इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। कोविड महामारी पर काबू पाने के लिए कई देशों में लगाए जा रहे प्रतिबंधों के बीच मिले जुले रुख के साथ खुले एशियाई बाजार। इससे पहले यूरोप में गिरा था मार्केट। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1885 में पहली बार उल्कापिंड की तस्वीर ली गई। 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को मंजूरी दी। 1996 में नासा ने मंगल ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए मार्स ग्लोबल सर्वेयर को स्पेस में भेजा। 2008 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई पर किया हमला। जिंदा पकड़े गए कसाब ने खोले सारे राज। बात करते हैं मौसम की। तमिलनाडु के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान निवार, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। राजधानी चेन्नई समेत राज्य के कई हिस्सों और पुडुचेरी में हो रही भारी बारिश, तबाही की भी तस्वीरें आईं। मेट्रो, रेल, फ्लाइट सब बंद, आंध्र भी अलर्ट पर। दूसरी ओर दिल्ली में कहीं कहीं बारिश और हिमाचल जम्मू कश्मीर में हो सकती है बर्फबारी। अब बारी सुविचार की। भगवान बुद्ध ने कहा था, अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपनी साथी कोमिका माथुर के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।